भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयत्मुदीरये नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवत् नैष्टिके श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 20 श्लोक नंबर 6 अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा पीछे आप दोहराएंगे। असंसक्तः शरीरस्मिन् अमुनेत्पादिते गृहे आपत्ति द्रविणेवापि कः कुर्यात् मम तं बुधः। असंसक्तः शरीरस्मिन् अमुनात्पादिते गृहे आपत्ति द्रविण है वापि कः कुर्यात् मम तं बुधः। असंसक्तः शरीरस्मिन् अमुनात्पादिते गृहे आपत्ति द्रविण वापि कुर्यात् मम तं बुधः। दोहराइए। आपत्ति द्रविणे वापि कः कुर्यात् मम तं बुधः। आसक्तं शरीरेस्मिन् माता असंसक्तः शरीरस्मिन् अमुनात्पादिते गृहे आपत्ति द्रविणे वापि कः कुर्यात् मम तं बुधः। शब्दार्थम् असंसक्त अनासक्त शरीर मैं बोल रहा हूँ, मेरा पीछा आप दोहराइए। शरीर शरीर में अस्मिन् इस अमूना, ऐसी देहात्म बुद्धि से उत्पादिते उत्पन्न गृह घर या घर में, अपत्ये संतान में, द्रविणे संपत्ति में, वा अथवा अपि भी कह कौन कुरियात करना चाहिए, ममताम आकर्षण बुधः विद्वान पुरुष। अनुवाद, जो देहात्म बुद्धि के प्रति रंच मात्र भी आसक्त नहीं है, भला ऐसे अत्यंत बुद्धिमान पुरुष किस प्रकार घर संतान संपत्ति तथा अन्य शारीरिक बातों में देहात्म बुद्धि के द्वारा प्रभावित हो सकता है। एक बार दोहराइए, जो देहात्म बुद्धि के प्रति रंच मात्र भी आसक्त नहीं है, भला ऐसे अत्यंत विद्वान पुरुष किस प्रकार घर संतान संपत्ति तथा अन्य शारीरिक बातों में देहात्म बुद्धि के द्वारा प्रभावित हो सकता है। मतलब प्रश्न के हिसाब से भगवान ने अभी पृथ्वी महाराज को बता रहे हैं। इसका तात्पर्य, वैदिक अनुष्ठान श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त होते हैं, किंतु ऐसे कार्यों से वास्तव में भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान की अनुमति से मनुष्य अपने इंद्रियों की तुष्टि करता है। दूसरे शब्दों में, जो भौतिक बाद ही इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखते हैं, उन्हें वैदिक अनुष्ठान करने के बहाने अपनी इंद्रिय तुष्टि का अवसर प्रदान किया जाता है। यही त्रैगुण विषय वेदा कहलाता है। वैदिक कृत्य तो प्रकृति के तीनों गुण के ऊपर निर्भर करता है। जो लोग भौतिक स्थिति के ऊपर उठे हुए हैं, वो वैदिक कृत्यों की तनिक भी परवाह नहीं करते। वो तो श्री भगवान के नित दिव्य प्रेमा भक्ति जैसे उच्चतर कार्यों में रुचि रखते हैं। ऐसी भक्ति निस्त्रीगुण्य कहलाती है। भगवान की भक्ति का देहात्म बुद्धि से कई सरोकार नहीं रहता है। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुतिदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरित्यसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज का जो विषय है, महाराज पृथु के चरित्र के ऊपर हम अभी पढ़ रहे हैं। तो महाराज पृथु ने जब यज्ञ करने की या 100 अश्वमेध यज्ञ करने की संकल्प लिए, तब जब वो राजा के रूप में पदार्पण हो गए, तब वो यज्ञ करना प्रारंभ किए। वास्तविक यज्ञ जो किया जाता है, भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए ही किया जाता है। भगवान श्री विष्णु को ही प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का यज्ञ अनुष्ठान या वैदिक कार्य समापन किया जाता है। तो यह भगवान महाराज पृथु ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए 99 यज्ञ समाप्त कर लिए ऑलरेडी, 99 यज्ञ। जब 100 अश्वमेध यज्ञ पूरी करने के स्थिति में आए, तब जो 100 अश्वमेध यज्ञ आखिरी यज्ञ का जो प्रारंभ किए, यज्ञ समापन होने के बीच में देवराज इंद्र ने आके इस यज्ञ में विघ्न डाले। क्यों? क्योंकि जो इंद्र है वो थोड़ा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है। वैसे ही अगर कोई इस मर्त्य लोक में, ये भौतिक जगत में कोई साधु संत या कोई व्यक्ति, कोई राजा कुछ पुण्य कार्य करना चाहता है या यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, तपस्या करना चाहता है, तो उसके ऊपर देवता लोग स्वाभाविक के विघ्न डालते ही हैं। क्योंकि जो देवता लोग होते हैं वो सोचते हैं अगर ये ऐसा कार्य करके पुण्य कर्म करने के बाद अगर वो हमसे आगे चला जाए तो इसलिए उनके अंदर भय रहता है। तो भय रहने के कारण वो हमेशा विघ्न डालने में प्रवृत्त रहते हैं। इंद्र भी ऐसा ही है, स्वर्ग का राजा है। तो जब वो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरी करने का समय आया, उस समय देवराज इंद्र ने आके अश्व को चुरा लिया। एक बार नहीं, कितने बार वो अश्व को चुराया, क्योंकि वो सोचा अगर मेरे वो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरी कर देंगे तो मुझे मेरे से आगे निकल जाएंगे या मेरा आसन चला जाएगा, मेरा पद चला जाएगा। देवता देव स्वर्ग में जो राजा होता है, इंद्र का जाता है, वो एक पद है। तो इसकी भय में वो साधुओं के रूप में आकर पाखंड फैलाते हुए उस यज्ञ में बारंबार विघ्न डालने लगे। जब इस प्रकार डालने लगे तो ये आए अश्व चुरा के ले गए। फिर अत्रिमुनि के द्वारा जब अत्रिमुनि अपना दृष्टि से तब देखा कि इंद्र अश्व को चुरा के ले जाता है, तो वह राजा से कहे। तो फिर राजा पृथु ने अपना पुत्र विजिताश्व को फिर अश्व को वापस लाने के लिए भेजे। ऐसे बार बार होने लगा। तो होने के बाद जब फिर आखिरी में महाराज पृथु ने बहुत क्रोधित हो गए,
बारंबार विघ्न डालते हैं, अच्छा पुण्य कर्म होता है, अच्छा भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या पवित्र कार्य समापन करना चाहते हैं, फिर उसके बीच में अगर कोई विघ्न डालता है तो फिर स्वाभाविक क्रोध आएगा ही। तो इसके कारण जब क्रोध आया तो इन महाराज पृथ्वी ने अपना धनुष उठा लिया, बाण उठा लिया उनको वध करने के लिए। पर उसी समय ब्रह्मा जी ने वहां आए, स्वयं जो इस संसार को जो सृष्टि करता है, जो विधाता है, जिसके हाथ में सारा संसार का कुंडली जिसके हाथ में है, उस स्वयं भगवान ब्रह्मा ने आके महाराज पृथ्वी को समझाए कि आप ऐसा मत करो, इंद्र को बध मत करो, क्योंकि इंद्र जो है वो भगवान का ही अंश है और आप भी भगवान का ही अंश है। अगर तुम इंद्र को बध करने का चाहोगे तो इसमें अनिष्ट होगा, तो इसीलिए आप मेरे बात मानो, इस इंद्र को छोड़ दो। अब वही 99 अश्वमेध यज्ञ या 99 यज्ञ रहने दो, एक में क्या है, ये तो वैसे ही वैदिक कर्मकांड है, कार्य है, उसमें क्या है, नहीं करेगा तो कौन, जो अगर तुम 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं कर पाओगे तो भी तुमको 100 अश्वमेध यज्ञ का ही फल प्राप्त होगा, तो इससे तुम चिंता मत करो। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने समझाए तो महाराज पृथ्वी ने समझ गए। फिर उसके बाद मैत्र मुनि विदुर जी को समझाते हैं कि इस प्रकार जब महाराज पृथ्वी ने 99 यज्ञ का समाप्त किए तो उस समय भगवान स्वयं उस यज्ञ से प्रकट हो गए, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। प्रकट होकर उस भगवान तो प्रकट हुए, साथ में इंद्र को भी लेके आए, तो साथ में लेके आके महाराज पृथ्वी से कहा कि आप इस इंद्र को माफ कर दो। फिर भगवान ने उनको बहुत सारे उपदेश किए हैं, तत्व ज्ञान दिए हैं। तो साधारणतः यज्ञ जो होता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही होता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यज्ञार्थे कर्मणां कृष्ण लोकयं कर्म बंधना, सॉरी यज्ञार्थे कर्मणां अन्यत्र लोकयं कर्म बंधना। तो अगर हम भगवान विष्णु के लिए अगर यज्ञ नहीं करते हैं तो वो बंधन उत्पन्न करता है, तो इसीलिए जो यज्ञ करते हैं तो भगवान प्रसन्न करने के लिए हम करना चाहिए। तो यहां प्रभुपाद भी एक लाइन में बताते हैं, वैदिक अनुष्ठान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त होते हैं, किंतु ऐसे कार्य से वास्तव में भगवान प्रसन्न नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान की अनुमति से मनुष्य अपने इंद्रियों की तुष्टि करता है। दूसरे शब्द में जो भौतिकवादी इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखते हैं उन्हें वैदिक अनुष्ठान करने के वाहन अपनी इंद्रिय तुष्टि का अवसर प्रदान किया जाता है। तो ये जो यज्ञ करते हैं ये जनरली क्या होता है, कर्मकांड स्तर पर होता है, जो व्यक्ति के अंदर कुछ इंद्र तृप्ति करने की इच्छा है तो उसको इस वैदिक कृत्य के माध्यम से, वैदिक यज्ञ के माध्यम से उनको इंद्र तृप्त करने के लिए प्रेरित मतलब अवसर प्रदान किया जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया जाता है फिर भी भगवान इसमें प्रसन्न नहीं होते हैं, तो भगवान तो प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति अपना शुद्ध चित्त से भगवान का भक्ति में ही स्थित रहता है। और जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि के अंतर्गत कार्य करता है तो उस व्यक्ति साधारणत इंद्र तृप्ति में ही लिप्त रहता है। जब मनुष्य इंद्र तृप्ति को अपना लक्ष्य बना लेता है तब वो पाप पूर्ण कार्य में लिप्त हो जाता है। जैसे भागवतम में बताया गया है एक श्लोक में, नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म यदन्द्रिय प्रीतय आपनन्ति। जब मनुष्य इंद्र तृप्ति को अपना लक्ष्य बना लेता है तब वो पाप कर्म करता है, विकर्म, जो कर्म के माध्यम से व्यक्ति को नरकगामी होने का 100% संभव होता है। तो कर्म जनरली 3 प्रकार होता है, एक अकर्म, विकर्म और कर्म, कर्म अकर्म विकर्म। तो जनरल इंद्र तृप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है वो विकर्म ही है, क्योंकि उनको वास्तव में ज्ञात नहीं है कि ये शरीर उनको किसके लिए प्राप्त हुआ है, ये शरीर प्राप्त होने का उद्देश्य क्या है, वो अज्ञान में है। देह आत्मा बुद्धि, 3 चीज इसमें आता है। जो व्यक्ति अपना बुद्धि को भौतिक स्तर पर रखकर शरीर के लिए कार्य करता है या आत्मा को शरीर मानता है, उस जीव को हम देहात्म बुद्धि के स्तर पर है ऐसा कह सकते हैं। जो अपना बुद्धि को शरीर के अपना बुद्धि के द्वारा शरीर को आत्मा मान बैठता है, जो कि आत्मा शरीर जो है अलग अलग वस्तु होता है। इसी चीज को भगवान ने यहां महाराज पृथ्वी को उपदेश कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि वास्तव में जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति इस ज्ञान को जानता है वो व्यक्ति कभी भी मोह में प्रवृत्त नहीं होता है। जनरली जो मोह होता है ये देहात्म बुद्धि के स्तर से उत्पन्न होता है। ये जो शरीर है ये शरीर सिर्फ हमारा या जीवात्मा का पाप कर्म का ही फल है। मनुष्य कर्म करता है, जो भी कर्म करता है उसमें कुछ फल की आकांक्षा रखकर वो अपना कार्य को समापन करने के लिए प्रयास करता है। जैसे एक स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ाई करता है, बहुत दम लगा के पढ़ाता है, पूरा 24 घंटा किताब लेके बैठता है, किसके लिए? क्योंकि वो चाहता है अगर मैं अच्छा से पढ़ाई करूं तो मैं एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाऊंगा, अच्छा फल प्राप्त करूंगा। तो इसी उद्देश्य से ही वो अपना पढ़ाई में व्यस्त रहता है, अपने कर्म में व्यस्त रहता है। तो व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो कुछ ना कुछ फल की आकांक्षा से ही कार्य करता है। यहां जो हमारा पूर्व कर्म का फल है, जो पाप कर्म का फल है, वही फल का स्वरूप है हमारे भौतिक शरीर। जहां इस शरीर की आत्मा को भौतिक शरीर के ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आत्मा जो है आध्यात्मिक है, परमात्मक अंश है, और वो जब भगवान के साथ रहकर अपना आनंद को भोगता है तो वो उसे वहां उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है जो कि भगवान के शरीर के साथ समान जैसा है, गुण से भी समान है। जैसे भगवान का स्वरूप ऐसे शरीर प्राप्त होता है, वो उसका जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये भोगता नहीं है, ये सिर्फ भौतिक शरीर में ही हम भोग सकते हैं। इस मर्त्य जगत में जब हम आते हैं इस शरीर को धारण करते हैं अपना कर्म के अनुसार, तो मनुष्य को भौतिक शरीर की ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। जब वो ग्रहण करता है तो उसका कर्म का फल है। तो मोह जो है वो अलग अलग प्रकार का, अलग अलग प्रकार के रूप में मनुष्य के सामने प्रकट होता है। कोई व्यक्ति अगर इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, वो चाहता है सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में ही हमारा कल्याण हो सकता है, या हमें अगर इंद्रिय तृप्ति करेंगे ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति मिलेगा तब हम सुखी हो जाएंगे, जो वास्तव में सुखी होने का कोई संभव भी नहीं है, सुखी नहीं हो सकता। इंद्रिय तृप्ति करने से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। जब वो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सोच रहता है तब वो तरह तरह की पाप पूर्ण कर्म करता रहता है, उसमें प्रवृत्त हो जाता है। और कोई कोई चाहता है कि अगर मैं अच्छा पुण्य करूंगा या दान दूंगा या यज्ञ करूंगा तरह तरह की, तो उसमें क्या होगा, मुझे उच्च लोक का प्राप्ति होगा। ये भी एक मोह है, इसमें क्या है, स्वार्थ रहता है, अपना स्वार्थ रहता है। तो और भी जो राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक कार्य करते हुए लोगों के लिए कल्याण करते हैं, लोगों का हित चाहते हैं, वो भी मोह में ही रहते हैं, क्योंकि ये सब देहात्म बुद्धि से ही उत्पन्न होता है। तो ये सब मोह से ही उत्पन्न होता है। तो इसीलिए व्यक्ति को इस देहात्म बुद्धि के ऊपर उठना चाहिए। ये सब तीन गुण के अंदर ही कार्य होता है, त्रैगुण्य विश्व वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन। भगवान अर्जुन से कहते हैं, ए अर्जुन तुम ये त्रैगुण्य के से ऊपर उठ जाओ, ये तीन गुण के अंदर इस समाज का, इस संसार का कार्य करता है, तुम ये तीन गुण से परे हो जाओ। जब तुम परे हो जाओगे तो फिर तुम ऐसा दुख जो है, जो तुम्हारा मोह उत्पन्न होता है घर के प्रति, संतान के प्रति, धन के प्रति, ये जो मोह उत्पन्न होता है, ये जो आकर्षण होता है, वो नहीं होगा। जब तुम तीन गुण के परे हो जाओगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, ये भौतिक बंधन से तुमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए तुम तीन गुण के परे हो जाओ, त्रैगुण्य विश्व वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्त निर्योगक्षम आत्मवान। तब तुम्हें निरोग अनुभव होगा, ये दुख कष्ट तुम्हें अनुभव नहीं होगा। मनुष्य का सबसे बड़ी कष्ट क्या है, इस भौतिक जगत में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो उनको अनुभव होता है, ये जो बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु होता है, फिर रोग से पीड़ित होता है, ये सब जीवात्मा का सबसे बड़ी दुख है। इससे बड़ी दुख और संसार में कुछ भी नहीं है। इसीलिए भगवान समझाते हैं कि तुम इस शरीर से ऊपर हो जाओ तब तुम्हें सुख प्राप्त होगा। ऋषभ देव भी यही चीज को अपना पुत्रों से समझाते हैं कि कहते हैं तुम जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इस मोह से फंसता नहीं है। नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म इतेन्द्रिय प्रीतय आपनन्ते न साधु मन्ये इत आत्मन्वयम् असन्नपि क्लेशद आसदेह। जब मनुष्य या जीवात्मा अपना इंद्र तृप्ति को अपना लक्ष्य बना लेता है तब उसे इस शरीर को प्राप्त होता है, जो कि उसे पता नहीं है यह शरीर प्राप्त होने का क्या उद्देश्य है, क्यों ये शरीर प्राप्त होता है। लेकिन जो बुद्धिमान है वो इसमें फंसता नहीं है, इसमें क्लेश है, ये शरीर जो है क्लेश सिर्फ क्लेश देता है, दुख देता है। तो इसके कारण क्या है, फिर एक दूसरे श्लोक में बताते हैं, पुंसास्त्रीय मैथुनिभाव एतम। जिस संसार में स्त्री और पुरुष इसमें ही स्त्री पुरुष का ही संपर्क ही इस संसार का ही सबसे बड़ी लक्ष्य होता है या धर्म होता है जीवात्मा का। यह भ्रांत धारणा के कारण जब स्त्री पुरुष से संपर्क स्थापन करता है तो उसे मोह का उत्पन्न होता है, तब वो क्या होता है ना इस तरह तरह की चीजों में फंस जाता है। सुताप्ति बेतीर, पुत्रों से मोह हो जाता है, धन से मोह हो जाता है, तो इसमें से ही उत्पन्न होता है। तो इसका मूल जो है उसमें क्या होता है, जब एक दूसरे से संबंध रखते हैं तो उनमें जो प्रगाढ़ बंधन उत्पन्न हो जाता है। तो इसके कारण वो घर संतान संबंधियों से धन से वो आसक्त हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी बंधन है। वो सोचता है यही मनुष्य जीवन का वास्तविक धर्म है, तो वास्तविक मनुष्य जीवन का जो धर्म होता है वो भगवान का भक्ति करना है। कैसे भगवान का भजन करके हम इस भौतिक संसार से, इस भवसागर से हम निकल जाए, इसके ये जो है मनुष्य जीवन का सबसे बड़ी उद्देश्य होना चाहिए। पर जब हम इस भौतिक संसार में अज्ञान रूपी अंधकार से रहकर इस परिवार में फंस जाते हैं, संतान प्रति मोह हो जाता है, आसक्त हो जाता है, स्त्री के प्रति आसक्त हो जाता है, धन से आसक्त हो जाते हैं, तब ये बंधन नहीं छोड़ता है। तो फिर क्या होता है, पुंसा स्त्रिया मैथुनि भाव मेतम तो यो मिथो हृदय ग्रंथि आहो। तब जब एक स्त्री पुरुष से संबंध होता है तो उसमें ग्रंथि जो है एक बंधन रूपी ग्रंथि के तरह वो बंधन बन जाता है, वो टूटता नहीं है, कभी भी नहीं टूटता है। तो उसमें क्या होता है, जब हम शरीर से संबंध बांधते हैं, जैसे संसार में परिवार, स्त्री पुरुष इसमें जो संबंध बांधते हैं तो उसमें मोह उत्पन्न होता है। तो मोह के कारण क्या होता है, मोह का रिजल्ट क्या मिलता है, न मैं और मेरा, यही करते रहते हैं, अहम ममेति। तब मनुष्य को दुख उठाना पड़ता है। तो इसमें इससे निकलने के लिए एक ही रास्ता है, भगवान का भजन करना है। इसी चीज को जो गोकर्ण उपाख्यान में गोकर्ण महाराज ने उन पिता अपने पिता को समझाते हैं कि तुम इस संसार को छोड़कर वन में चला जाओ। असार खलु संसार दुख रूपी विमोह का, ये असार संसार जो है क्षणभंगुर है, असार है, तो इसको अपना मत समझो। सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहा वत जलत निशन। तो ये इसमें कौन किसका पुत्र है, कौन किसका धन है, कौन किसका स्त्री है, कोई किसी का नहीं है। ये सिर्फ मोह से ही उत्पन्न होता है, इसमें मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है। तो सिर्फ ये सब स्नेह से ममता से ही जलते रहते हैं, इसमें वास्तविक सुख नहीं है। इसीलिए तुम इस असार संसार को छोड़कर वन में चला जाओ और भगवान का भजन करो। और भी कहते हैं, न चंद्रस्य सुखम अस्ति न च चक्रवर्तिनः। जो इंद्र जो है वो स्वर्ग का राजा है, उसको भी सुख नहीं है। जो सारा चक्रवर्ती राजा है, सारा पृथ्वी को अपना मुट्ठी में रखा है, राजत्व करता है, उसको भी सुख नहीं है। तो फिर सुख किसमें है? तो फिर बताते हैं, विरक्त से सुखम अस्ति मुनिर एकांत जीविना। सुख सुख सिर्फ विरक्त से ही प्राप्त हो सकता है, अनासक्त। अनासक्त होकर हम इस जो दुख है इसको हम दूर कर सकते हैं। अनासक्त कैसे होंगे? चलो एक तो रास्ता मिला कि अनासक्त होने से ही हमें सुख मिलेगा। जैसे एक साधु, एक संत, एक भगवान का भक्त, वो कोई भी भौतिक पदार्थ से लिप्त नहीं रहता है। वन में लाखों मुनि ऋषि भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का तपस्या में लीन रहते हैं। तो उनको उनको ये सब चीज का दुख नहीं है, क्योंकि उनमें से वो पूरी संपूर्ण भाव है, अनासक्त है। तो सिर्फ भौतिक चीजों से अनासक्त रहकर हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा सुख कहीं भी नहीं है। तो सिर्फ भगवान का भक्ति से, भगवान का नाम कीर्तन से ही हम इस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी चीज को सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज समझाते हैं, कैसे भगवान का भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने एक श्लोक में परीक्षित महाराज समझाते हैं, तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छिताम भयम्। अगर कोई व्यक्ति इस भौतिक कष्ट से, इस मायाजाल से और इस तरह तरह का भौतिक इच्छा से अगर मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, और भगवान का कीर्ति को गाना चाहिए, भगवान का लीला को दूसरे को कहना चाहिए या भगवान का लीला को सुनना चाहिए और भगवान का चिंतन करना चाहिए। जब हम भगवान का कथा श्रवण करेंगे, भगवान का लीला को श्रवण करेंगे, तो उसको फिर हम क्या करेंगे? चिंतन करेंगे। चिंतन करने से क्या होता है? नहीं, जो भौतिक कलमश जो है वो अपने आप धूल जाता है। छिंद्यन्ते हृदय ग्रंथि, तो ये जो हृदय ग्रंथि जो है, ये जो हम भौतिक चीजों में आसक्त होकर ये जो ग्रंथि बन जाता है, एक रस्सी से जो ऐसे जकड़ जाता है, तो उसको हम भगवान का कथा श्रवण करने से, भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का चिंतन करने से इस ग्रंथि को हम काट सकते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज भी हमें कहते हैं कि भागवतम में कहते हैं, श्रवणम कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति है। ये नवदा भक्ति को अगर हम अपना जीवन उतारेंगे, कोई एक भी आपका आचरण में ले लो, चाहे श्रवण करो, चाहे भगवान का कीर्तन करो, चाहे भगवान का वंदन करो, भगवान का अर्चन करो, भगवान का पूजा करो, कहीं भी भाव, साक्ष्य भाव से हो या वात्सल्य भाव से हो या दास्य भाव से हो, कोई भी एक रिश्ता भगवान से जोड़कर अगर हम भगवान का भक्ति करेंगे, तब हम इस जो भौतिक कलमस से, ये जो देहात्म बुद्धि जो है, इस तर से हम बाहर निकल सकते हैं। कलिजुग में यही एक रास्ता है, क्योंकि कलिजुग का सबसे बड़ी यज्ञ जो है यही हरिनाम संकीर्तन है। यज्ञ संकीर्तन प्रायु यजंत है सुमेधसा। यज्ञ संकीर्तन ही कलिजुग का यज्ञ है। चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलौ नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिर अन्यथा। तीन बार बताया गया है किस इस कलिजुग में सिर्फ एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या है? हरि नाम संकीर्तन है। पर हम क्या करते हैं, ये बात को सुनने के बाद भी हम दूसरे रास्ता ढूंढते हैं, कहीं ध्यान करते हैं, कहीं तपस्या करते हैं, कहीं धूप में बैठ के ध्यान करते हैं भगवान को, कड़ी धूप में बैठकर तपस्या करते हैं, तो इसमें कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बता दिया ऑलरेडी, शास्त्र बता दिया है कि और कोई रास्ता नहीं है, यही एक ही रास्ता है, इसमें कोई नियम नहीं है। कहीं भी किधर भी कैसे भी आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं। प्रभुपाद भी यही नियम हमें दिए हैं, जो चार नियम हमें दिए हैं, भगवान का 16 नाम माला जप करना, ये मिनिमम हमारे लिए साधना है। ये जस्ट मनुष्य बनने के लिए, भक्त बनने के लिए नहीं है। जब हम ये चीज को ठीक से आचरण में लाएंगे, तब हमें हम भगवान का भक्त कहला सकते हैं। जब तक ये चीजों को हम आचरण में पहले बार नहीं लाते हैं, तब तक हम पशु ही रहते हैं। पशु से मनुष्य बनने के लिए यह नियम दिया गया है, क्योंकि सब इस भौतिक संसार में जो है व्यक्ति पशु की तरह ही कार्य करता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नराणम। यही चार चीज अगर करता रहे तो पशु की समान ही है। इसीलिए यह हरिनाम ही सर्वश्रेष्ठ रास्ता है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है इस मनुष्य समाज के लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार महाराज राधागुंज महाराज ने, परम पूज्य राधागुंज महाराज ने कह रहे थे कथा में, कुछ ऋषि ने आकर व्यासदेव को प्रश्न करने के लिए आए। व्यासदेव ने अपना आश्रम के पास नदी में स्नान कर रहे थे, तो उनके मन में कुछ तीन प्रश्न उठा कि संसार में नहीं चार युग में कौन सा जो श्रेष्ठ है, और दूसरा चार वर्ण से कौन सा वर्ण श्रेष्ठ है, और तीसरा जातियों से कौन सी जाति सर्वश्रेष्ठ है। ये महाराज कह रहे थे कि ये जो है विष्णु पुराण में छठा अध्याय में है ये, तो वो जब आके नदी के किनार में देखे कि प्रश्न करने के लिए अपेक्षा किए, तो उस समय वेदव्यास ने नदी में स्नान कर रहे थे, तो वो देखे कि कुछ ऋषियां आए मुझे प्रश्न करने के लिए, तो वो समझ गए क्योंकि वो स्वयं भगवान का अवतार है, त्रिकालदर्शी है, वो अंदर से उन समझ गए कि ये ऋषि आए हैं मुझे क्या प्रश्न करने वाले हैं, तो वो समझ गए। तो भी उनके सामने वो तीन डुबकी लगाए, एक डुबकी लगाए, लगाने के उठने के बाद कहे कलिजुग धन्य है, दूसरी डुबकी लगाए फिर कहे शूद्र धन्य है, तीसरी डुबकी लगाए फिर कहे स्त्री धन्य है। तो ये जो तीन बात कहे, तो ऋषि ने इसको सुनकर वो समझ गए, उनका प्रश्न का उत्तर उनको मिल गया, वो फिर वापस उनको प्रश्न नहीं किए क्योंकि समझ गए कि युग में कलियुग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें एक ही गुण है, क्या हरि नाम से ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत, कलोष्मिन युगे जना न प्रायण अल्प आयुष सभ्य कलोष्ण युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग प्रद्रता। ये कलियुग में सबका बुद्धि मंद बुद्धि है, आलसी है, तो उनको ये यज्ञ, ये जो तपस्या ध्यान, ये उनके द्वारा संभव नहीं है। एक दिन पहले एक घंटे पहले वो क्या करते हैं उनको समझ में नहीं आता है, याद नहीं आता है, तो वो फिर वो इतना सारे चीज को कैसे ग्रहण करेंगे, वेद शास्त्र को वो हजम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इसीलिए कलियुग में हरिनाम संकीर्तन ही हमें प्राप्त हुआ है, ये चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ी कृपा है कि हमें ये हरिनाम प्राप्त हुआ, इसी के माध्यम से हम भगवान को बहुत जल्द प्राप्त कर लेंगे। और दूसरी बात है, ये जो हरिनाम के, ये जो कलियुग में पुण्य का जो फल है वो जल्दी मिलता है, वो पाप का फल जल्दी नहीं मिलता है, वो थोड़ा टाइम लगता है, पर मिलता है, ऐसा नहीं को नहीं मिलेगा। जो हम कर्म करेंगे, कुकर्म करेंगे, तो उसका फल मिलेगा, पर वह बाद में मिलेगा, पहले हम पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है, ये एक अच्छा गुण है। तो इसमें कोई नियम कानून भी नहीं है। कलीर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। दूसरी बात यह है, शूद्र धन्य है, क्योंकि भगवान कहते हैं स्त्री वैश्य तथा शूद्र तेव जन्ति परांगति। शूद्र सिर्फ क्या है, भगवान कथा श्रवण करके ही वो अपना परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। और भी महाराज कह रहे थे, स्त्री की बात कर रहे थे, जो स्त्री होता है अगर वो अपना पति का सेवा बड़ी निष्ठा से करता है तो वो भी उसी पद को प्राप्त होता है जो अपना पति का पद परम गति प्राप्त होता है, वैसे ही पति के सेवा में उसका संबंध रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो मान लो कोई किसी का पति अगर शराबी है या कोई पाप करता है को, तो उसमें कोई उनको संपर्क नहीं रखने जरूरत है। उनको क्या है, उनका सेवा में ही उनको निष्ठा रखना चाहिए। पति की सेवा से उनका मतलब है, वो क्या कैसा है क्या है वो उनसे मतलब नहीं है। तो अगर इस प्रकार अगर कोई अपना पति का सेवा बड़ी निष्ठा से नियम शास्त्र के अनुसार वो करता है तो उसको भी वही पद प्राप्त होता है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं स्त्री वैश्य तथा शूद्र ते भी जानती पराम गति। वो लोग अगर मेरा भक्ति करेंगे मेरा नाम लेंगे वो भी सेम मेरा गति को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार जब हम भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का लीला को श्रवण करेंगे, तब हमारा हृदय में जो कलमास है और ये जो देहात्म बुद्धि स्तर पर हम जो कार्य करते हैं, जो देहात्म बुद्धि के कारण मोह का उत्पन्न होता है, इस मोह इसी माध्यम से दूर हो सकता है। इस श्लोक में भगवान राजा पृथ्वी महाराज को यही उपदेश करते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ऐसा मोह से आकर्षित नहीं होता है, ऐसा मोह से फंसता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा और शरीर अलग वस्तु होता है, भिन्न है। शरीर जो है भौतिक है, ये क्षणभंगुर है, ये एक दिन नष्ट होने वाला है। जो आत्मा है वो आध्यात्मिक है। अजो नित्यम शाश्वत अयम पुराण अयम सनातन, ये सनातन है, शाश्वत है, ये नष्ट नहीं होने वाला है। जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है आत्मा का नष्ट नहीं होता है। तो जब बुद्धिमान व्यक्ति होता है ये ऐसा मोह से मोह को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए भगवान कहते हैं आप जैसा बुद्धिमान राजा जो पूर्व आचार्यों से ज्ञान प्राप्त करके अपना ज्ञान को प्राप्त किए हैं, तो ऐसा व्यक्ति अगर मेरा इस माया जो दैवी माया से मोहित हो जाए तो फिर उसका जो ज्ञान है, उसका तपस्या है, उसका दान है, उसका जो भक्ति है वो व्यर्थ ही है, कोई काम का नहीं है। क्योंकि वो जानते हुए भी अगर मेरा मोह माया में और फंसता है, क्योंकि ये माया ही है, जो भी हम देखते हैं वो भगवान का ही माया है, भगवान ही इस माया को रचते हैं। जो इंद्र जो यज्ञ से या अश्व को चुरा लिया है, ये भी भगवान का भी एक माया है। भगवान का कार्य में कोई अगर बाधा डालता है तो वो सफल नहीं हो पाता है, चाहे भौतिक स्तर पर हो या आध्यात्मिक स्तर पर हो। अगर भगवान का उद्देश्य है इस संसार को विलीन करना है, नाश करना है, तो उसमें अगर तुम कितना भी प्रयास करो कोई भी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम मेरे माया से मोहित मत हो, इस इंद्र को तुम क्षमा कर दो और अपना जो धर्म है उसी धर्म को पालन करते हुए तुम ये प्रजाओं का पालन करो। यही भगवान ने इस श्लोक में और भी आगे जो श्लोक आता है इसमें ही उपदेश करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है इस संसार घर परिवार स्त्री इसमें वो आकर्षित नहीं होता है, ममता नहीं रखता है, वो अपना भगवान का भक्ति में ही लीन रहता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचन्ति न कांक्षति सम सर्वेच भूतेषु मद भक्त्या लभते पराम निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्यम विनिवृत्त काम। तो इस प्रकार जो भगवान का भक्त होता है, जो इस तत्व को समझ जाता है, वो इस माया में फंसता नहीं है। इसलिए हमें ऐसा नहीं है कि जो राजा पृथ्वी है वो भौतिक के मोह से मोहित है, नहीं, ये हमारे लिए एक उपदेश प्रस्तुत किया गया है। तो उसको इससे हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, किस प्रकार हम भगवान का भक्ति करें भौतिक चीजों से अलग रहकर। तो अभी समय हो गया, अभी यही हम समाप्त करते हैं। जय श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। आप बांट लीजिए।